بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. لله ما في السماوات وما في الأرض. اللہ سبحانہ و تعالی بہت بڑے ہیں، اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، اللہ کا نام بہت بابرکت ہے، اللہ کی شان بہت اعلیٰ ہے، سارے کمالات اور خوبیاں اللہ کے پاس ہیں، سارے خزانے ان کے قبضے میں ہیں، اللہ کے نزدیک ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہے، سارے مخلوق کے دل ان کے سامنے مسخر ہیں، اور ان کے ایک ارادے میں اور ایک اشارے میں ساری دنیا کی پیداوار ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ان کے فرشتوں کی، ان کے نبیوں کی، ان کے رسولوں کی اور ان کی تمام مخلوق کی رحمتیں ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان سب پر سلام ہو، اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے احسان کرنے والے ہیں جو کبھی ختم نہ ہو، ایسی نعمتیں دینے والے جن کو کوئی گن نہیں سکتا، اور ایسی طاقت والے ہیں جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ہر لمحہ اللہ کی نعمتیں بارش کی طرح ہمارے اوپر برس رہی ہیں. اگر ہم غور کریں، انسان غور کرے اللہ کے انعامات پر اور ہر انعام پر شکر ادا کرے، اللہم لک الحمد لک الشکر، یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، یا اللہ آپ نے زمین، آسمان، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، جانور، درخت، سمندر سب ہمارے فائدے کے لیے مسخر کر دیے، یا اللہ آپ نے ہمیں نیک آدمی کی طرح بنایا، ہم کو لنگڑا، لولا، اندھا، کانا، معذور نہیں بنایا، پھر مصیبتوں اور حادثات سے بچایا، نیک گھر والے، اولاد، آسان روزی، رہنے کی جگہ، اچھے پڑوسی، اچھی مسجد عطا فرمائی. ہر نعمت پر آدمی کہے اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر. ہم اللہ کے بندے ہیں اور ایک ایک دانے کے محتاج ہیں، ایک ایک دانے. آدمی اکڑ جاتا ہے، میں نے کمایا، میں نے لایا، میں نے پکایا، بھائی نہیں، ایک ایک دانے کے محتاج ہیں. اللہ آپ نے جہالت کے اندھیرے سے بچایا، علم دین سکھایا. ہمارے عمل بہت کمزور تھے، ہماری نماز بھی پھوٹی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر بھی قبول فرماتے ہیں. اور ہمارا شکر بہت قلیل تھا، بہت دفعہ شکر کا موقع تھا، شکر کیا نہیں، لیکن پھر بھی اللہ نعمتوں سے محروم نہیں فرماتے. اور نافرمانی اور گناہ بہت ہوئے، لیکن اللہ پھر بھی پردہ ڈال دیتے، تھوڑا وقت اور لے لو، توبہ کر لے گا، تھوڑا وقت اور لے لو. اللہ کی زمین پر کھڑے ہیں، ان کی ہوا میں سانس لیتے ہیں، ان کا دیا کھاتے ہیں، ہاتھ پاؤں، دل، دماغ سب اللہ نے دیے، علم بھی دیا، توفیق بھی دی، پھر تسبیح پڑھتے ہیں، انگلیاں بھی اللہ نے دی، زبان بھی اللہ نے دی، دماغ بھی دیا، زبان ہلاؤ، انگلی پر گنو، یہ ساری توفیق دی، اور آخر میں خوش ہو کے انعام بھی دیتے. چھوٹا بچہ ہے، بچی، کوئی لکڑی کے ٹکڑوں سے گھر بناتے ہیں، تو ان سے بنتا نہیں ہے، تو ابا اماں آ کے کہتے ہیں کہ لاؤ ہم بنا دیں، تو بنا دیتے ہیں، دیکھو کیسی اچھی جھونپڑی ہے، تم نے بنائی ہے، بہت انعام دیتے ہیں اس کو، شاباش، بہت اچھا کام کیا. بچہ بڑا خوش ہوتا ہے، میں نے بنایا ہے، اور یہ لو تمہارے لیے چاکلیٹ. ساری چیزیں اللہ نے دی ہیں، آخر میں خوش ہو کے اللہ خوش ہو جائیں گے، جنت کا ٹکٹ دے دیا جائے گا. دونوں چیزوں کا مقابلہ کر لیں. اللہ کی بڑائی آدمی بیان کرے صبح شام، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی مداد کلماتی رضا نفسی وزنت عرشی، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی مداد کلماتی رضا نفسی وزنت عرشی. استغفار کیجیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. درود شریف پڑھے آدمی، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله، اور حفاظت کی دعائیں پڑھیے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا حول ولا قوۃ الا بالله. قرآن شریف میں آیات ہیں شفا کی، آیات ہیں منجیات کی، توکل کی آیات ہیں، جن کو منزل کے نام سے معروف ہیں، چوروں ڈاکوؤں سے پناہ ہو جاتی ہے، وسوسوں سے شیطان سے پناہ ہو جاتی ہے. بعض آیات ہیں سورہ حشر کے آخر کی، 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں. سورتوں کے خواص بتائے گئے، سورہ یاسین پڑھیے، سارے کام آسان ہو جائیں گے. سورہ واقعہ پڑھیں تو وہاں انشاءاللہ فقر فاقہ نہیں آئے گا. قرآن شریف میں برکت ہے، ایک ایک بول میں برکت ہے. قرآن کی قدر معلوم ہو جائے تو آدمی چلتے پھرتے، آتے جاتے، جس کو جو یاد ہے بس اس کو ہی دہرا رہا ہے، جو قل ہو اللہ واحد ہی یاد ہے اسی کو دہرا رہا ہے، اس پہ اس کا بہت فائدہ ہو جائے گا. تو اللہ کی بڑائی کے کلمات، درود شریف، استغفار جتنے زیادہ سے زیادہ ہو جائیں، جتنی توفیق ہو جائے آدمی کرتا ہے. नमाज का मौका है फ़राइज़ के अलावा, तो क़ज़ाए उम्री दोहराए, तवज्जो तहज्जुद पढ़े, अवाबीन पढ़े, इशराक पढ़े, सलातुल तस्बीह पढ़े, जैसा जैसा बकदर मौका मिल जाए, वो वीकेंड है छुट्टी है तो वही आज नमाज पे मेहनत होगी। ताबई उबैस कर्नी रहमतुल्लाह अलैह कोई ताबई फरमाते थे, आज की रात रुकू की रात है, सारी रात नमाज से पहले पढ़ चुके थे फ़राइज़ सब चीज़ें, अब आज की रात रुकू की रात है, एक नमाज की नीयत बांधी और एक रुकू में सुबह कर दी, आज की रात सजदे की रात है, तो एक सजदा शुरू किया सुबह हो गई। तो ऐसी ऐसी मेहनतें करके लोग गए हैं, क़यामत के दिन आदमी सोचेगा कि काश मैं अपनी 70 साल की ज़िंदगी एक सजदे में ही गुजार देता, एक दफ़ा और जाना नसीब हो जाए, मैं ये करके आऊँ। कब्रिस्तान में से लोग गुजरते हैं, अगर किसी कब्र वाले से बात करने की इजाज़त हो जाती और पूछते हैं कि मियाँ तुम्हें क्या चाहिए, अरे बस 2 मिनट को बाहर आए तो 2 रकअत नमाज पढ़ो और कोई काम नहीं करते, नमाज की कदर वहाँ जाके आगे जाके मालूम। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम माँ और बहनों, हमारे बुजुर्ग, हमारे मौजूद भाइयों, अल्लाह ताला आप सबको बेहतरीन इल्म अमल साले की तौफीक अता फरमाए। जो वक्त आपने फारिग किया है अल्लाह उसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। अम्बिया सिद्दीकीन शुहदा सालेहीन के साथ आपका हशर फरमाए। जब हम अल्लाह को याद करेंगे अल्लाह हमें याद फरमाएंगे। जो आदमी दीन सीखने जाता है फरिश्ते उसके लिए पर बिछाते हैं, अल्लाह की मखलूक उसके लिए दुआओं में लग जाती है। जिस घर में अल्लाह का जिक्र होता है वो आसमान में सितारों की तरह चमकते हैं। जो लोग अल्लाह के वास्ते मिले और अल्लाह के वास्ते वापस गए और कोई गर्ज नहीं थी, वो क़यामत में अर्श के साए में होंगे और नूर के मिंबरों पर होंगे। अल्लाह की याद बहुत बड़ी चीज़ है। हर चीज़ की कुछ लिमिट और हदें मुकर्रर की गई कि नमाज इतनी दफ़ा पढ़ना है, रोज़ा इतनी दफ़ा रखना है और हज एक दफ़ा जाना है। अल्लाह के जिक्र का मौका आया तो उसकी कोई मकदार नहीं मुकर्रर की गई। फरमाया हमको बहुत याद किया करो, ज़िक्रुल्लाह ज़िक्रन कतीरा, ज़िक्रुल्लाह अकबर, यानी ऐसे ऐसे कलिमात लगाए गए कि उसकी कोई लिमिट नहीं लगाई गई। नमाज सबसे अच्छी कौन? जिसमें जिक्र ज़्यादा हो। रोज़ा सबसे अच्छा कौन? जिसमें जिक्र ज़्यादा हो। हज सबसे अच्छा कौन? जिसमें अल्लाह का जिक्र ज़्यादा हो। तो पता चला कि जिक्र करने वाले सारी भलाइयाँ ले उड़े, जिक्र करने वाले सारी भलाइयाँ ले उड़े। हम ऐसे जब दीन सीखने की मजलिस में बैठें तो हम ऊंची ऊंची नियत करें, भाई वक्त मसरूफ़ है, थोड़े से वक्त को आए हैं, तो ऐसी ऐसी नियतें करें आदमी के उसमें अल्लाह पाक राज़ी हो जाएं, हम सब से, उम्मत के हर भाई और बहन से हम अल्लाह के दोस्त बन जाएं, हमारी तौबा कबूल हो जाए, शैतान और नफ्स के बहकाने से बच जाएँ, गफलत और सुस्ती दूर हो जाए, ज़िंदगी में सुन्नत तरीक़े आ जाएँ और हमारा नफ्स मुतमईन्ना हो जाए। अल्लाह की बातें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हमारी तबीयत बन जाएं, हमको उसी चीज़ का दिल चाहे जो अल्लाह चाहते हैं। जब ऐसा होगा तो ज़िंदगी सिरात मुस्तकीम पे आ जाएगी, नेकी फैलाने का जज्बा आ जाए, उम्मत की खैरख्वाही आ जाए, दुनिया में सेहत सलामती अमन चैन आसान रिस्क और दुआओं की कबूलियत हो, उसको कहते हैं हयातुन तय्यबा, हर चीज़ जो ज़रूरत की है अल्लाह ने अता फरमा दी, और आखिरत में आसान हिसाब मगफरत जन्नतुल फिरदौस में हमेशा रहना नसीब हो जाए। ऐसी नियत करके बैठे कि अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, कुछ आता नहीं, थोड़ा सा वक्त फारिग किया है, मुझको ऐसी चीज़ें कहलवा दीजिए, लिखवा दीजिए, दिखला दीजिए कि मेरा काम बन जाए। आदमी दिल से मांगे अल्लाह पाक इखलास पे और तलब पे अता फरमाते। तो पढ़ने वाले की कोई हकीकत नहीं है, सुनने वाले के दिल में जितनी नियत होगी तलब होगी, जहाँ जहाँ जो सुन रहे हैं अल्लाह पाक वैसी ही बात कहलवा देंगे। तो देने वाले अल्लाह ताला हैं और आपका मामला बराह रास्त अल्लाह ताला के साथ। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दरूद शरीफ पढ़कर इब्तिदा होगी सबक की। ज़रियतुल वसूल इला जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरूद शरीफ जो अरबी की किताबों में लिखे होते हैं यहाँ पर उसके तर्जुमे पढ़े जाते हैं ताकि शौक़ पैदा हो कि ऐसे कलिमात के में कहा क्या जाता है। ऐ अल्लाह सलात व सलाम और बरकतें और करामतें नाजिल फरमाइए हमारे आका और नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो आपके बंदे और रसूल नबी उम्मी हैं, नबी रहमत हैं, शफी उम्मत हैं, जिनको आपने रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल व असहाब औलाद और आपके अहल बैत और यबीन और ताहरीन पर और अजवाज मुतहरात उम्महातिल मोमिनीन पर सलाम सलात व सलाम नाजिल फरमाइए, और सबसे अफजल रहमत, सबसे पाकीज़ा तर सलाम, सबसे बड़ी बरकत तादाद में उन चीज़ों के जो आपके इल्म में हैं, वज़न में उन चीज़ों के जो आपके इल्म में हैं, और उन चीज़ों की भर्ती के मुताबिक जो आपके इल्म में हैं, आपके कलिमात की रोशनाई और आपकी रिबा के मुंतहा के मुताबिक, इसी तरह या अल्लाह सलात व सलाम और बरकतें और करामतें नाजिल फरमाइए। अफजल सलात पाकीज़ा तर सलाम सबसे बड़ी बरकतें तमाम अम्बिया और मुरसलीन पर और हर एक की आल और आजवाज पर और अस्हाब व इत्तिबा पर और तमाम औलिया अल्लाह पर जहानों में और तमाम अहले ईमान पर ख़्वाह अव्वलीन में से हों या आखरीन में, तादाद में उन तमाम चीज़ों के जो अल्लाह को मालूम है और वज़न में उन तमाम चीज़ों के जो अल्लाह को मालूम है, और हम पर रहमत नाजिल फरमाइए या इलाही इन सब लोगों की बरकत से, और हमें शिफा और आफियत अता फरमाइए हर आफत और मुसीबत से, और हमें माफ़ फरमाइए और हमारे साथ लुत्फ़ जमील के मुताबिक मामला फरमाइए, और हमारे गुनाहों की नहुसत से ऐसे लोगों पर हम पर मुसल्लत ना फरमाइए जो हम पर रहम ना करें। ऐ अरहमुर राहिमीन, अपने रहमत से इन दुआओं को कबूल फरमाइए। ये दरूद शरीफ के कलमात के तर्जुमे होते हैं। दरूद शरीफ दुआ है अल्लाह के दरबार में, या अल्लाह दर्जात बुलंद कीजिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तमाम अम्बिया मुरसलीन जितने औलिया अल्लाह गुजरे उनकी बरकत से अल्लाह हमारा भी काम बन गया। दरूद शरीफ सरासर अपने फ़ायदे के आदमी दुआ कर रहा है अल्लाह की बारगाह। अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जब अरबी के दरूद पढ़ें तो कभी कभी उर्दू का तर्जुमा भी उसका देख लिया करें, फ़ायदा हो जाएगा। पढ़ने के आदाब, हज़रत शेख ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी साहब दामत बरकातहुम की किताब में से कुछ वाक़यात कुछ बातें पढ़ी जाएंगी ताकि पढ़ने का शौक़ पैदा हो, शायात जैसे शौक़ पैदा होता है। उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हो के पोते, उमर रदी अल्लाह अन्हो का ज़माना गुजर गया, अब उनके पोते बड़े हुए, एक मरतबा हरम मक्का में तशरीफ़ लाए, तवाफ़ फरमा रहे थे तो आपकी मुलाकात वक्त के बादशाह से हो गई। दूसरे बादशाह आ गए थे, हशाम बिन अब्दुल मलिक। तो हशाम ने पहचान लिया कि उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हो के पोते हैं, तवाफ़ कर रहे हैं, बादशाह भी उनके साथ तवाफ़ कर रहा है। तो बादशाह ने सलाम के बाद अर्ज़ किया कि हज़रत कोई ज़रूरत हो तो हुक्म फरमाइए कि मैं आपकी खिदमत कर सकूँ। बादशाह तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, कोई जाओ वक्त लो, कहाँ जाओ कैपिटल में दारुल खिलाफा में, उनसे वक्त लो, कोई चीज़ पेश करो। बादशाह खुद आ गया है, तवाफ में घूम रहा है, अभी तो कहीं नहीं जा सकता और पूछ भी रहा है कुछ चाहिए आपको। तो उन्होंने फरमाया कि हिशाम मुझे बैतुल्ला शरीफ के सामने खड़े होकर गैरुल्ला से हाजत बयान करते हुए शर्म आती है। अदब इलाही का तकाजा है कि यहाँ पर सिर्फ उसके आगे हाथ फैलाया जाए। माफ कर रहे हो, अल्लाह से मांगो, तुम भी मांगो, मैं भी मांगो। बादशाह लाजवाब होकर खामोश हो गया। जब आप हरम शरीफ से बाहर निकले तो बादशाह भी ऐन उसी वक्त बाहर निकला, दोनों का चक्कर पूरा हुआ, बाहर आ गए। आपको देखकर करीब आया, कहने लगा हजरत अब फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, अब तो आप फारिग हो गए। आपने फरमाया हिशाम बताओ मैं तुमसे क्या मांगू, दीन मांगू कि दुनिया मांगू। बादशाह जानता था कि दीन के मैदान में आपका शुमार वक्त की बुजुर्ग हस्ती में होता था, बुजुर्ग तरीन हस्तियों में होता था। कहने लगा हजरत आप मुझसे दुनिया मांगिए। अच्छा रहे आप मुझसे दुनिया मांगी, दीन तो आपका है ही। आपने फौरन जवाब दिया कि दुनिया तो मैंने कभी खालिक और मालिक से नहीं मांगी, तुमसे क्यों मांगूंगा। ये सुनते ही बादशाह का चेहरा लटक गया, चला गया। भाई जिनको अल्लाह ने दीन की दौलत अता फरमाई तो उनको और भी जरूरत, अल्लाह ताला हर जरूरत के लिए काफी, अल्लाह ताला उनकी तौफीक दे। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह सवाल किया गया कि क्या वजह है हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, बुजुर्ग अहलुल्लाह से लोग जाके पूछते क्या वजह है हमारी दुआ कबूल नहीं होती। हजरत ने फरमाया कि तुमने खुदा को पहचाना मगर उसका हक अदा नहीं किया, कुरान पढ़ा मगर उस पर अमल नहीं किया, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा किया मगर सुन्नत की इत्तबा नहीं की, और तुमने शैतान पर लानत तो की मगर उसकी फरमाबरदारी भी की, और अपने अयूब से आँखों को बंद कर लिया मगर दूसरों के अयूब देखने के लिए आँखें खुली रखी। फला आदमी ऐसा है, फला आदमी ऐसा है, मस्जिद में ऐसा है, फला में ऐसा है, हर वक्त दूसरों के चलते अपने अयूब पे नहीं कि भाई मेरे अंदर क्या कमी है। वही अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अपने अयूब पे नज़र करें। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हलाल और उम्दा खाने को अमल पर मुकद्दम फरमाया। अल्लाह ने फरमाया कुरान शरीफ में, कुलू मिन तय्यिबाति व अमलू सालिहा, खाओ पाकीज़ा चीज़ों में से और नेक अमल करो। खाना हलाल हो ये पहले बताया, फिर बताया कि नेक अमल। एक बुज़ुर्ग हैं हज़रत सहल रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते थे एक आदमी किसी बस्ती में जाए, वहाँ उसको मुश्तबह चीज़ें मिले, यानी शक व शुबह वाली चीज़ हलाल है कि नहीं, उसको मुश्तबह चीज़ें मिले, हया हलाल मयसर ना हो, वो भूखा रहे और फाके से रात गुजारे कि काम से क्या किसी बस्ती में हलाल खाना मिलता नहीं, तो बेचारा रात भर फाके से रहा, तो फिर हर चीज़ में शक व शुबह था क्या खाऊं। तो सारी बस्ती वालों के आमाल के बराबर उसके नामा आमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। एक रात बेचारा भूखा रहा, इसलिए कहीं गलत चीज पेट में ना चली। एक दूसरे बुजुर्ग फरमाते थे, जिसने हलाल की तलब के लिए अपने को तवाबों में डाला, उसके गुनाह इस तरह झड़ गए जैसे मौसम सरमा में दरख्त के पत्ते झड़ जाते। ये कौल है, जिसने हराम का एक लुकमा खाया उसके दिल में 40 दिन तक कसावत रहती है। हराम का एक लुकमा खा लिया, बाज़ बुजुर्ग थे, किसी ने बुला लिया, कुछ खिला दिया, बहुत दिन तक परेशान रहे, गंदे गंदे ख्यालात दिल में आते रहे। बड़े बुजुर्ग बहुत देखना चाहिए क्या खाते हैं, कहाँ से खाते हैं, किसी की दिल आजारी नहीं, किसी को मुंह पर कह नहीं देना चाहिए कि मियाँ हम बहुत बुजुर्ग हो गए तुम्हारे नहीं खा सकते, ऐसा नहीं। आदमी ऐसी जगह जाए नहीं, ऐसी जगह से खरीदे नहीं जहाँ से कुछ मैं ये एक्सक्यूज नहीं है, एक दफा किसी ने कोई ऐसी चीज गलत खा ली कि अब 40 दिन तक मेरा नहीं होगा तो अब नमाज नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। इस किस्म के फतवे बाज़ार लोग पूछने आते हैं, बाज़ार ऐसा हो गया आप बताइए 40 दिन पढ़ूंगा कबूल नहीं होगी तो क्या करूँ। सही, पढ़ना जरूर है, वक्त उसकी नूरानियत उसकी रूहानियत नहीं रही, लेकिन पढ़ना जरूर है, वो एक अलहदा फर्ज है, लेकिन ये इसलिए बताया जाता है कि ऐसा काम ना करें। किसी ने एक मसला पूछा हमारे भाई ने, किसी की एक नमाज रह जाए एक वक्त की और नमाज का दूसरा वक्त आ गया, वो मस्जिद पहुंच गया तो क्या करें। एक होती है कज़ाए उम्री कि अगर किसी की बहुत सारी नमाजें हैं तो पढ़ता रहे बुराता रहे, और एक है कि एक दिन की एक नमाज किसी वक्त वजह से निकल गई, सोता रह गया था, कोई चीज़ हो गई, अगली नमाज का वक्त दाखिल हो गया, तो ये जो नमाज अभी बाकी रह गई है पहले ये पढ़ी जाएगी, उसके बाद उस जो वक्त दाखिल हुआ है उसकी नमाज पढ़ी। लेकिन इस चीज़ को आदत नहीं बनाना है, अभी मसला मालूम हो गया आप तो पहले ऐसा कर लिया करेंगे, ऐसा नहीं। ये है कि कभी जिंदगी में 10 साल में ऐसा कोई मौका आ गया, कभी एक नमाज किसी वजह से रह गई, पहले वो नमाज पढ़ी जाएगी, फिर उसके बाद जो उस वक्त की अब जो नमाज आई है वो, मतलब किसी की असर रह गई, तो मगरिब का टाइम आ गया, पहले असर भी पड़ेगा फिर मगरिब, लेकिन इस चीज़ को आदत नहीं बनानी। ये नहीं कि ये कोई जारी फतवा है कि भैया रोज़ाना का मामूल है, मामूल की चीज़ नहीं है ये, तो तौबा अफसोस करने की, कभी ऐसा हो गया तो आदमी जल्दी से उससे फारिग हो जाए। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। देखिए तस्बीहात पढ़ने का तरीका मुफ्ती अब्दुर्रऊफ सखरवी साहब ने लिखा है अपनी किताब में रोज़ाना के मामूलात। कोई इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ने जा रहा है, पहले नियत करे कि या अल्लाह मैं आपका ख़ताकार सियाहकार बंदा या बंदी हूँ, आपके सिवा कोई माफ़ करने वाला बख्शने वाला नहीं, लिहाजा हम आपसे तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। दिल में ये नियत हो, फिर इस्तिग़फ़ार करें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, या और कोई इस्तिग़फ़ार। दरूद शरीफ पढ़ने जा रहे हैं तो पहले नियत करें कि या अल्लाह मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोटा सा उम्मती हूँ, आपके मुझ पर बेशुमार एहसानात हैं, आपसे मोहब्बत करना मुझ पर वाजिब है, आपका हक़ मोहब्बत अदा करने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करने के लिए दरूद शरीफ पढ़ता हूँ, ऐसा सोच कर फिर दरूद पढ़ना चाहिए। तस्बीहात पढ़नी है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, तो आदमी सोचे कि या अल्लाह आपके मेरे ऊपर बहुत एहसानात हैं, मैं आपकी नेमतों में गर्क हूँ, उनका शुक्र अदा करना, या अल्लाह आपसे मोहब्बत रखना मुझ पर ज़रूरी है, लिहाजा आपकी मोहब्बत पैदा करने के लिए ये तस्बीह पढ़ता, ये सोच कर नियत करके अब तस्बीह पढ़। तो रोज़ाना उसमें आदमी को शौक़ भी पैदा होगा, और तस्बीहात में रूहानियत है, तवानाई है, पूरी नहीं हो सके 100 तो 33-33 पढ़ ले, वो नहीं हो सके 10-10 दफ़ा पढ़ ले, 7-7 दफ़ा पढ़ ले, उंगलियों में पढ़ ले, आते जाते हुए पढ़ ले, छोड़ना नहीं है, थोड़ा बहुत जो अमल हो गया या अल्लाह ज़्यादा नहीं हुआ, बहुत मशगूलियत रही, बीमारी आ गई थी, आज मुश्किल में था, बस थोड़ा सा लाया हूँ, जब तक अपने आप को माजूर, कमज़ोर, आजीज, लाचार, परेशान समझता रहेगा, तरक्की करता रहेगा। जिस दिन समझा कि अब मैं हजारों हजार में खेल रहा हूँ, अब मसला ही नहीं है, रमज़ान में मैं रो लिया था, मैं देखा था शब कदर थी, वो बस हो गया मेरा काम, अब उसी दिन नीचे आ गया, उसी दिन उसका काम खराब हो गया। तो अल्लाह के यहाँ जो है आजिज़ी बड़ी चीज़ है, आजिज़ी बड़ी चीज़ है। अशरा जिलहज के दिन आ रहे हैं, उनमें एक दिन का रोज़ा ऐसा है कि 1 साल का सवाब है, और एक रात की इबादत ऐसी, यानी हर रात की इबादत ऐसी है कि शब कदर का सवाब, ये हदीस शरीफ में आया है। तो वो जो पहले 9 दिन 10 दिन है उनमें इतना सवाब है कि आदमी रमज़ान में तो शैतान बंद होता है, सबको मालूम होता है, मस्जिद में ऐलान भी होता है, अशरा जिलहज में किसी को पता ही नहीं चलता सवा ईद के। तो ईद से पहले के जो 10 दिन है बहुत ही अहम है, इनकी ऐसे दिन है कि पूरे कैलेंडर में इस तरह के दिन नहीं होते। तो आदमी उनमें कोशिश करके, दफ्तर से थोड़ा जल्दी आ गया, कुछ कोशिश कर ली थोड़ी, उनमें इस दफ़ा बहुत अच्छा है कि 10 दिन में से 4-5 दिन तो वीकेंड के, 2 वीकेंड उसमें आ रहे, तो आदमी उनमें लग जाए, तो उनके अहकाम, चीज़ें, सुन्नतें। कभी मेरी ज़िंदगी में कितनी दफ़ा आएगा रमज़ान, 40 दफ़ा, 50 दफ़ा, 70 दफ़ा, बहुत सारा तो आधे से ज़्यादा तो गुजर गया, आप मालूम ही अब कितनी दफ़ा आएगा। इस तरह अशरा जिलहज भी है कि लोग हज को चले गए, वो तो लाखों खर्च करके हरम शरीफ में एक एक के 1 लाख कमा रहे हैं, मैं थोड़े थोड़े तो कुछ कमा लूँ यहाँ पर, मैं तो मेरी दुकान इतनी नहीं चली, मैं थोड़ा सा कमा लूँ, या अल्लाह मैं कुछ नहीं लाया, फिर वो आदमी अपने को लाचार समझे और थोड़ी बहुत कोशिश में लगा रहे। सर्दियों के दिन हैं और रातें बहुत लंबी होती हैं, आदमी चाहे तो रात को सो भी ले, तहज्जुद भी पढ़ ले, एक पारा कुरान का भी पढ़ ले, और जितनी यानी इबादत की चीज़ें आदमी रात में अतमीनान से कर सकता है। सर्दी का मौसम बहुत गनीमत है, इसलिए आदमी उसको गनीमत जाने, खुद भी, घर वालों को भी, बच्चों को भी, उसकी आदत हो कि ये सर्दियों का मौसम बहुत गनीमत है। अल्लाह की पनाह मांगने की दुआएं होती हैं, इनको इस्तआज़ा कहते हैं, कि हर वक्त आने वाली मुसीबतें, क्योंकि तो हमारे नामा अमाल में जो कुछ है, माजी, हाल, मुस्तकबिल, आइंदा, अगले साल, 5 साल बाद, हमें तो कुछ नहीं पता, अल्लाह ताला के सब इल्म है, हमारी पूरी ज़िंदगी को हमसे ज़्यादा जानते हैं, और हमारे ऊपर 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान है, और हमारे हर काम में हमारा फ़ायदा देखते हैं, और हकीम है, हमारी तरबियत फरमाते हैं। तो ऐसे अल्लाह अलीम और ख़बीर जो सब कुछ जानते हैं, उनके सामने सब खुली किताब की तरह है, उनके सामने पनाह मांगनी चाहिए, अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे नहीं होगा, आप मुझे सारी चीज़ों से बचा दीजिए। और उसमें ये हदीस शरीफ की चीज़ें पढ़ी जाती हैं ताकि थोड़ा दिल में शौक़ पैदा हो। आदमी क्या आदमी कहता है मेरे पास बहुत माल है, मेरे पास जो है बहुत ताकत भी है, डंडा भी है, यहाँ माहौल भी अच्छा है, पुलिस भी है, फोन करके कुछ मसला नहीं है, आदमी दुआ से गाफिल रहता है ताकि कोई परेशानी हो। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस किस तरह से दुआ मांगी है, याद करना मकसद नहीं है, आदमी वैसी तलब और वैसा शौक़ दिल में पैदा कर अपनी ज़बान मांगे। मामलात की परेशानी से अल्लाह की पनाह, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन वसाविस सदर व शैतातिल अम्र व फितनतिल कब्र, भाई हकीकी रवायत है, अल्लाह मैं आपकी पनाह लेता हूँ दिल के वसवसों से, मामलात की परेशानी से, कब्र के फितनों से, कब्र के फितने से, रात दिन और हवाओं के साथ आने वाली आफतों के शर से अल्लाह की पनाह। ये किताब जो है ये इसमें हदीसें कंपाइल की हैं मौलाना यूनुस, ये मौलाना उमर पालनपुरी साहब रहमतुल्लाह के साहबजादे हैं, उन्होंने किताब कंपाइल की है अल्लाह की पनाह, और इसमें रवायतें जमा की हैं, ये बेहकी की रवायत है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा यलिजु फिल लैल व मिन शर्रि मा यलिजु फिन नहार व मिन शर्रि मा तहुब्बु बिहिर रियाह, अल्लाह मैं आपकी पनाह लेता हूँ हर उस आफत की बुराई से जो रात में आए, और हर उस आफत की बुराई से जो दिन में आए, और हर उस आफत की बुराई से जो हवाओं के साथ उड़ती है, जैसे आंधी से आदमी उड़ जाते हैं, दरख्त टूट जाते हैं, झोंपड़ियाँ बर्बाद हो जाती हैं, या अल्लाह हम आपकी पनाह मांगते हैं कि ऐसी कोई चीज़ में हम या हमारे कोई लोग मुबतला हों। और ये यानी अहादीस में आई हैं इस तरह की दुआएं, ऐसी ऐसी दुआएं मांग रहे हैं, ऐसी ऐसी दुआएं मांग रहे हैं, ख़तरनाक रूहानी जिस्मानी बीमारियों से अल्लाह की पनाह मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल क़स्वति वल गफलति वल आइलति वल दिल्लति वल मस्कनति व अऊज़ु बिका मिनल फ़क़्रि वल कुफ़्रि वल फ़ुसूक़ि वल शिक़ाक़ والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والبرص والجنون والجذام والسيء الأسقام، اللہ میں آپ کی پناہ لیتا ہوں سخت دل ہونے سے اور غفلت سے اور بہت محتاجی سے اور ذلت و خاری سے، اور آپ کی پناہ لیتا ہوں محتاجی سے، کفر سے، نافرمانی سے، ہٹ درمی سے، شہرت سے، دکھاوے کے لیے عمل کرنے سے، اور آپ کی پناہ لیتا ہوں بہرے اور گونگے ہونے سے، جسم پر سفید داغ پڑنے سے، دیوانگی اور کوڑھ سے، اور بقیہ جتنی جتنی خراب بیماریاں ہیں سب سے پناہ لیتا. یہ الفاظ کہاں سے آئے؟ ابو داؤد ابن حبان اور مستدرک الحاکم، یعنی حدیث شریف کے الفاظ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں، امت کو سکھا رہے ہیں کہ ایسے ایسے مانگو، تڑپ تڑپ کے مانگو، یا اللہ اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں، اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں. جیسے لوگ اپنے بچوں کے لیے، والدین بہت مہربان ہوتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں سوچ سوچ کے، بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یا اللہ اس مصیبت سے بچا دیجیے، اس چیز سے بچا دیجیے، اس سے بتا دیجیے. تو اپنے لیے بھی مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، سب کے لیے، پورے خاندان کے لیے، ساری امت کے لیے مانگے. تو اس طرح کی دعاؤں کی کتابوں میں عربی میں ایسی دعائیں لکھی ہوتی ہیں. بعض دعائیں استغفار کی ہوتی ہیں، بعض دعائیں آئندہ مستقبل کے لیے ہوتی ہیں، یا اللہ ان چیزوں سے بچا، اللہ تعالیٰ ہر مصیبت شر سے پریشانی سے محفوظ رکھے، آمین. رزق کی میں آسانی کے لیے کچھ وظائف پڑھے جاتے ہیں تاکہ آدمی رزق حلال کی طلب میں بھی نکلے اور اللہ سے دعا مانگے. ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے، اللہ سے مانگے، اللہ کوشش کر رہا ہوں، مجھ سے کچھ ہوگا نہیں، اس میں برکت ڈال دیجیے. فاطمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فقر و فاقہ کی شکایت کی کہ ایک مہینہ ہو گیا گھر میں چولہا جلانے کی نوبت نہیں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو تو 5 بکریاں دے دوں، اور چاہو تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی ہے وہ بتا دوں، وہ دعا سیکھ کر دوں. اب صحابیات کا مزاج تھا، جب کوئی چیز ہو تو دنیا کے بدلے آخرت لے جاتے، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذو القوۃ المتین، و یا راحم المساکین، و یا ارحم الراحمین. یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، ذو القوۃ المتین، و یا راحم المساکین، و یا ارحم الراحمین. اے سب سے اول، سب سے آخر، قوت اور طاقت والے، مسکینوں پر رحم کرنے والے، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے. ان کلمات کے ساتھ آدمی اللہ کی بڑائی اور اپنی عاجزی، آدمی اپنی حقیقت پہچان لے سب سمجھ میں آ جائے. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، فقر و فاقہ اور تنگی معاش کی شکایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، خواہ کوئی ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر سلام بھیجو، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایک بار سورہ اخلاص پڑھو. اس نے ایسا ہی کیا. گھر میں داخل ہوتا ہے آدمی، بسم اللہ، السلام علیکم، اللہم صلی اللہ محمد، سورہ اخلاص پڑھے، اللہ پاک نے اس پر رزق کی بارش فرما دی، یہاں تک کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں پر بھی بہانے لگا. دینے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ. سنت طریقے اختیار کرے، اللہ سے مانگے، اللہ دے دے. اللہ کسی کو ایک نمک کی ڈلی دے دے، سونے کی ڈلی دے دے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی. دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، لینے والا ہونا چاہیے. حضرت فرماتے ہیں کہ دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، لینے والا ہونا چاہیے. تو کہہ کہ ہمارے پاس جھولی نہیں ہے، ہم کو مانگنا بھی نہیں آتا، پہلے جھولی بھی مانگے. اللہ میں فقیر ہوں لیکن میں پیالہ بھی نہیں لایا، ہاتھ کا پیالہ بنائے، اللہ میں جھولی بھی نہیں لایا، پھر مانگے، یا اللہ جھولی پہلے دے دیجیے، پھر اس میں رکھ کر مانگے، یا اللہ اب جھولی آ گئی، اب اس میں ڈال دیجیے. یعنی اس کو پھر حدیث شریف میں دعائیں آئی ہیں کہ یا اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ میں بہترین دعا کیا کروں، کہ مجھ کو سکھائیے، کہ میں ایسے کلمات سکھائیے محفوظ، مجھے مانگنا بھی نہیں آتا، پہلے مانگنا سکھائیے پھر مجھ کو دیجیے. اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ وہ دعا کرنے سے پہلے قبول کرنے والے ہیں، اور دل میں آنے سے پہلے عطا فرما دیتے ہیں. کہ لوگ اللہ کو جو پہچان گیا اس کو دنیا آخرت میں ہر طرح کا فائدہ ہو جائے گا. بھائی اللہ کو پہچان دو. سارے بزرگوں، مشائخ، اور جو ہمارے جمعے کے خطبے، اور جتنی دین کی محنت ہے، خلاصہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. بھائی اللہ کو پہچان لو، اپنی حقیقت پہچان لو، راستے پہ آنے والے بہت دیں گے، یہاں پہ بھی دیں گے، وہاں پہ بھی دیں گے. حج کے فضائل کچھ پڑھے جائیں گے. لوگ ماشاءاللہ ہر علاقے میں، سب خاندانوں سے تھوڑے تھوڑے لوگ حج کو گئے ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے، ان کے سفر کو آسان فرمائے، اور ان کی برکتوں میں وہاں جو دعائیں وہ فرما رہے ہیں، اللہ اس کی رحمتیں برکتیں ہمیں بھی کچھ عطا فرمائے، اور ہمارے جو حاضرین حضرات، ہمارے بہن بھائی سن رہے ہیں، اللہ پاک سب کو حج بیت اللہ کی زیارت عطا فرمائے. فرمایا، جب حاجی حج گھر سے نکلتا ہے تو اس کی سواری جو بھی قدم اٹھاتی ہے اس کے بدلے ایک نیکی لکھ دی جاتی، ایک برائی مٹا دی جاتی. جب عرفات میں ٹھہرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، कहते हैं, देखो मेरे बंदे, परागंदा बाल गुबार आलूद कपड़ों के साथ मेरे दरबार में हाजिर हुए हैं। तुम गवाह रहो, मैंने इनके गुनाहों को माफ कर दिया है, चाहे वो राई के दानों और बारिश के कतरों के बराबर ही क्यों ना हो। जब हाजी कंकरियां मारता है तो किसी को पता नहीं कि उसे कितना सवाब मिलेगा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उसको कयामत के दिन उसका बदला अता फरमाएंगे। और जब वो तवाफ विदा करता है तो अपने गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे उसकी माँ ने उसे अभी अभी जना। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक उम्रा दूसरे उम्रे तक के तमाम गुनाहों का कफारा है। बुखारी शरीफ में। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज और उम्रा मुसलसल करते रहो, हज और उम्रा मुसलसल करते रहो, ये फ़क्र और गुनाहों को ख़त्म करता है जैसा भट्टी सोने और चांदी से खोट को साफ करती है। ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज और उम्रा मुसलसल करते रहो, इसलिए कि उनका मुसलसल करना यानी बार बार करना उम्र को बढ़ाता है और फ़क्र और गुनाहों को ख़त्म करता है जैसे भट्टी सोने और चांदी से खोट को साफ करती है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बूढ़े कमज़ोर और औरत का जिहाद हज और उम्रा है। ये नसाई शरीफ। अल्लाह ताला हम सबको हज के फजाइल अता फरमाए। आइंदा हफ्ते में भी पढ़े जाएंगे, सबको हज बैतुल्ला की ज़्यारत अल्लाह पाक अता फरमाए। एक मिनट का मदरसा, हज़रत शेख अब्राहुल हक साहब, ये हज़रत शेख शाह मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं, उन्होंने किताब लिखी है जो हर घर में हर जगह पढ़ी जाए, कि उसमें एक मिनट में बहुत सारी चीज़ें मालूम हो जाती हैं। बड़े बड़े गुनाह जो बगैर तौबा के माफ़ नहीं होते, एक गुनाह भी ऊपर से नीचे गिराने यानी जन्नत से जहन्नम में ले जाने के लिए काफ़ी है, मगर अल्लाह जिस पर फजल फरमाए। आन करना, किसी को बुरे लकब से पुकारना जैसे ओ अंधे वगैरह किसी को कहना। बदगुमानी करना यानी बगैर दलील के सिर्फ हालात और कराइन से किसी को बुरा समझना। बात हुई, कोई चीज़ हुई, पहले से हमने समझ लिया ये तो ऐसा था, हम नहीं कहते थे ये तो था ही, अपने ख्यालात पकाना शुरू कर दिए, बाजा बोल भी दिए जबान, उसको तो बदगुमानी कहते हैं। कि आपको हकीकत मालूम है, आपने पूछा है, आपने उसका नामा अमल देखा है, आपने क्या फरिश्तों से जाके पूछ कर आए, मतलब आपको क्या पड़ी है कि दूसरे की चीज़ की तहकीक करते हैं। बदगुमानी बहुत बुरी चीज़ है, अल्लाह ताला हमें उससे बचाए। एक साहब ने अपने शेख को खत लिख के पूछा कि फलां शेख ने फलां अपने शागिर्द को क्यों इजाज़त दे दी, आप बताइए वो तो क्यों इजाज़त दे दी। शेख ने जवाब में लिखा कि जब कब्र में फरिश्ते आएंगे मुनकिर नकीर और तुमसे पूछेंगे कि फलां शेख ने फलां शागिर्द को क्यों इजाज़त दे दी, तो तुम कह देना कि मुझे मालूम नहीं। फजूल की चीज़ें, मस्जिद में क्या है, फलां में क्या है, कौन क्या कर रहा है, किसका बजट क्या है, फजूलियात में आदमी अपने नामा अमाल से गाफिल, दूसरों की तहकीक में पूछता कर रहा, दुनिया आखरत बर्बाद। बदगुमानी से बचना चाहिए। हर आदमी ठीक है, मुझसे बेहतर है, मुझसे अच्छा है, अल्लाह पाक जन्नत दाखिल कर। गुनाह के नुकसान जो दुनिया में पेश आते हैं, रिस्क में कमी हो जाती है, गुनहगार को अल्लाह ताला से वहशत सी रहती है, गुनहगार को आदमियों से भी वहशत होने लगती है, बिलखसूस नेक लोगों से, और जिस कदर वहशत बढ़ती जाती है उनसे दूर और बरकत से महरूम हो जाता है। के मुकाबले में तलात के फायदे जो दुनिया में मिलते हैं, नेकी के फायदे, तरह तरह की बरकतें जमीन और आसमान से नाजिल होती हैं, हर तरह की तकलीफ और परेशानी दूर होती है और कामों में आसानी होती है, अल्लाह ताला उसके हर काम में आसानी फरमा देते हैं। भाई गुनाह छोड़ना और नेकी करना, उसमें आखरत का तो फायदा है ही, दुनिया का भी अपना ही फायदा है, दुनिया का ही अपना ही फायदा। वजह के बहुत से जो गैर मुसलमान भी होते हैं, अल्लाह पे ईमान नहीं रखते, लेकिन वो झूठ नहीं बोलते। पूछा कि क्यों नहीं बोलते झूठ, कहते हैं जब झूठ बोला हमें दुनिया का नुकसान हो गया कारोबार में, इसलिए नहीं बोलते। सलमान के पास दीन में ऐसी चीज़ें हैं कि उसको दुनिया आखिरत की हर भलाई मिल सकती है अल्लाह ताला। हमारे माशरे के हर तबकात के बारे में उनके फजाइल पढ़े जाते हैं, जैसे फजाइल उन्निसा पढ़े गए, घर की खवातीन के फजाइल, एक रिसाला है हजरत मुफ्ती अब्दुर्रऊफ सखरवी साहब दामत बरकातहू का, बेटी अल्लाह की रहमत। छोटे बच्चे होते हैं, बेटा तो सब खुश ही होते हैं, बेटी अल्लाह की खुसूसी रहमत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत में है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र में तशरीफ़ ले जाते तो सबसे आखिर में हज़रत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा से जाकर मिलते, और जब सफ़र से वापस आते तो सबसे पहले हज़रत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा के पास जाते। जन्नत की ख़वातीन के सरदार जाते वक्त सबसे आखिर में मिलकर गए उनसे, वापस आते वक्त सबसे पहले जाकर उनसे मिले। इस कदर शफ़क़त और मोहब्बत का इजहार फरमाया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तर्ज अमल से। बेटी की इज्जत, उसके साथ शफ़क़त, उसका एहतराम, उसके साथ मोहब्बत का बेमिसाल नमूना कायम फरमाया। बेटियों की परवरिश करने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने फजाइल बयान फरमाए हैं, बेटे की परवरिश पर इतने बयान नहीं फरमाए। अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है, सरकारे दो आलम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी की 3 बेटियां हो या 3 बहनें हो, वो उनके साथ एहसान और सलूक का मामला करे, उनके साथ अच्छा बर्ताव और अच्छा मामला करे, तो उसकी बदौलत वो जन्नत में दाखिल। बेटियों की, बहनों की खिदमत किया, जन्नत मिलेगी। तिरमिजी शरीफ की रवायत है। एक और रिवायत है, ये भी तिरमिजी शरीफ की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी की 3 बेटियां या 3 बहनें हों या 2 बेटियां या 2 बहनें हों, और वो उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारे, यानी उनके हुकूक अदा करे, उनके साथ एहसान सलूक का मामला करे वगैरह वगैरह, उनके हुकूक की अदायगी के सिलसिले में अल्लाह से डरता रहे, तो अल्लाह ताला उसकी बदौलत उसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। आयशा रदी अल्लाह अन्हा से किस्सा मनकूल है, फरमाती हैं कि खातून मेरे पास आई, उनके साथ उसकी 2 बच्चियां थी। वो औरत, उसने सवाल किया, सवाल किया आयशा रदी अल्लाह अन्हा से कि हमें कुछ खाने को दो। उस वक्त मेरे पास सवाए एक खजूर के और कुछ नहीं था, वो खजूर मैंने उसको दे दी। उस अल्लाह की बंदी ने, माँ ने उस खजूर के 2 टुकड़े किए। माँ भी भूखी है, बच्चे भी भूखे हैं, कुछ मांगने को आए, खजूर मिले, ने 2 टुकड़े किए खजूर के, और एक एक टुकड़ा दोनों बच्चियों के हाथ पर रख दिया, खुद कुछ नहीं खाया। माँ की मोहब्बत, हालांकि उसे खुद भी ज़रूरत थी। उसके बाद वो खातून बच्चियों को लेके चली गई। थोड़ी देर बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो खातून के आने और खजूर के टुकड़े करके दोनों बच्चियों को देने का वाकया सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको 2 बच्चियों की परवरिश करने की नौबत आए, वो उनके साथ शफ़क़त का मामला करे, तो वह बच्चियाँ उसको जहन्नम से बचाने के लिए पर्दा बन जाए। और बाज़ हिस्सों में इसको 2 खजूर से बताया जाता है कि पहले 1 खजूर तोड़ के बच्चियों को दी, उन्होंने जल्दी से खा ली, और जो खजूर माँ ने अपने रखी थी उसको गौर से देखने लगे कि ये भी मिल रहा है, तो माँ ने उसको भी तोड़ के खिला दिया। तो बच्चे की परवरिश और बच्चों की फजाइल अल्लाह ने जो अता फरमाया, कि जो बच्चे अता फरमाए बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चियाँ अता फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह, बाप जन्नत का दरवाज़ा, माँ के कदमों तले जन्नत, बच्चियों की परवरिश करो जन्नत में ले जाए। माशरे के हर तबके को बताया कि दूसरे तबके को अपने लिए बाईस रहमत समझो, जो मिल गया है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लक अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। ये किताब है मिसाली औलाद, कि अब इसमें माँ बाप के बारे में कुछ कुछ उनकी खिदमत के पढ़े जाते। एक आदमी के 4 बेटे थे, खाता पीता आदमी था, बीमार हो गया। बेटों में से एक ने दूसरे 3 भाइयों से कहा कि ऐसा करो कि तुम अब्बा जी की तीमारदारी करो, तुम्हें विरास में से कुछ नहीं मिलेगा, वरना मैं तीमारदारी करता हूँ, यानी अब्बा बीमार हैं, ऐसा करो कि तुम उनके देखभाल करो और मैं नहीं करता, मैं पैसे ले लूँगा उनके बाद, या फिर मैं करता हूँ सारी उनकी खिदमत और तुम सारे पैसे ले लेना अगर उनका इंतकाल हो गया। तो सारे दूसरे भाई उस पर राज़ी हो गए, वो खिदमत वगैरह तो तू ही कर ले, अब उनका जो विरासत है वो हम ले लेंगे, कोई बात नहीं। उसने अपने वालिद की जी भर के खिदमत की। एक दिन बाप फौत हो गया और शर्त के मुताबिक इस आदमी को कुछ हिस्सा नहीं मिला। दूसरे भाई बड़े खुश हुए कि खिदमत भी इसी ने की और वर्से में भी कुछ नहीं लिया, भाई भी खुश, खानदान से खुशी हो गई। काफ़ी अरसा गुजर गया, उस आदमी ने रात को ख्वाब में देखा कोई शख्स कहता है कि फलां जगह 100 दीनार हैं, वो जाके ले लो। उसने ख्वाब में पूछा कि उसमें बरकत भी होगी कि नहीं। ख्वाब वाले ने कहा कि बरकत नहीं होगी। सुबह घर में ख्वाब का जिक्र किया, घर वालों ने कहा कि निकाल लो ले लो, तो वो शख्स नहीं माना। दूसरे दिन फिर ख्वाब में देखा, कोई शख्स कहता है कि फलां जगह 10 दीनार दफन है, वो ले लो। सोने लिए थे, अच्छा थोड़े कम है, 10 ले लो। उसने कहा कि इसमें बरकत है कि नहीं, ख्वाब में पूछता है, यानी इतना नेक आदमी है कि ख्वाब में कोई चीज़ आ जाए तो उसमें भी छान फटक करता है, इतने नेक आदमी। तो उसने कहा ख्वाब वाले ने कि इसमें बरकत नहीं है। सुबह उठ के घर में ख्वाब बताया, उन्होंने कहा भाई ले ही लेते, 10 ही मिल जाते, फिर भी नहीं माना, ये नहीं लिया। तीसरे दिन ख्वाब में देखा किसी ने कहा फलां जगह 1 दीनार है, वो जाके ले ले। पूछा भाई इसमें बरकत है कि नहीं है, तो उसने कहा इसमें बरकत है, ये ले ले। उसने जाकर वो दीनार निकाल लिया और उसको जाके बाजार में 2 मछलियां लेकर आया। उससे को इनकी किताबों में लिखा गया है, 2 मछलियां लेकर आया, उस मछली के पेट में से एक एक मोती निकला, जिस किस्म का मोती किसी ने आज तक नहीं देखा था। होते 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 महल्ले में, शहर में, पूरे मुल्क में खबर फैल गई कि इस आदमी के पास ऐसा मोती निकला है जो पूरे मुल्क में किसी के पास नहीं है। बादशाह वक्त ने बहुत इसरार के साथ, बड़ी खुशामद के बाद उन 2 मोतियों को 90 खच्चरों के बोझ के बकदर सोना देकर खरीद लिया। बादशाह ने 90 जानवर सोने से लदे हुए थैले भिजवाए कि भाई वो मोती मुझको चाहिए। ये तो भाई माँ बाप की खिदमत का, यानी आखिरत में तो सवाब है ही, बाज़ औक़ात अल्लाह ताला दुनिया में भी दे, बाज़ औक़ात अल्लाह ताला दुनिया में भी दे देते। एक मर्तबा एक आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अपने बाप की शिकायत की कि वो मेरा माल ले लेता है, अब्बा मेरा माल ले लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी के बाप को बुलाया, वो एक बूढ़ा आदमी था बेचारा, एक लकड़ी का सहारा लेते हुए हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उसने कहा एक ज़माने में ये कमज़ोर था मैं ताकतवर, ये फ़कीर था मैं अमीर, मैंने कभी उसे अपनी कोई चीज़ लेने से नहीं रोका, आज मैं कमज़ोर हूँ ये ताकतवर, मैं फ़कीर हूँ और ये अमीर, ये अपना माल मुझसे बचाता है और बखल से काम लेता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बातें सुनकर रो पड़े, फरमाया अगर पत्थर भी ये बातें सुन ले तो अपने आंसू जब्त ना कर सके। फिर लड़के से फरमाया कि तू और तेरा माल तेरे बाप का है, तू खुद और तेरा माल तेरे बाप का है। एक आदमी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज किया मेरे बाप के पास मेरी कुछ रकम है, पैसे ले लिए अब्बा ने, देता नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे होकर बैठ गए और फरमाया कि तू और तेरा सब कुछ तेरे बाप का। इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है, एक आदमी का मजलिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब से गुजर हुआ, यानी वहाँ से गुजरा, उसका जिस्म दुबला पतला था। हाजरीन ने कहा काश ये जिस्म अल्लाह के रास्ते में दुबला हुआ होता। आदमी जा रहा था, हाजरीन ने कहा कि काश ये जिस्म अल्लाह के रास्ते में दुबला हुआ होता। अब देखो किस तरह इस्लाह फरमाते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शायद वो अपने बूढ़े माँ बाप पर मेहनत करता हो और उनकी खिदमत में लगने और उनके लिए रोजी कमाने की वजह से दुबला हो गया हो, अगर ऐसा है तो फी सबीलिल्लाह है। फिर फरमाया शायद वो छोटे बच्चों पर मेहनत करता हो, यानी उनकी खिदमत और परवरिश और रिस्क मुहैया करने में दुबला हो गया हो, अगर ऐसा है तो फी सबीलिल्लाह है। फिर फरमाया कि शायद अपने नफ्स पर मेहनत करता हो, यानी अपनी जान के लिए मेहनत करके हलाल रोजी कमाता हो ताकि अपने नफ्स को लोगों से बेनियाज कर दे और मखलूक से सवाल ना करना पड़े, अगर ऐसा है तो वो फी सबीलिल्लाह। अल्लाह ताला हमें हर चीज़ में एतदाल अता फरमाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वालदैन के दरमियान तेरा तख्त पर सो जाना इस तरह कि तू उनको हंसाता हो और वो तुझे हंसाते हो, इस काम से अफजल है कि तू फी सबीलिल्लाह तलवार से जिहाद करे। सूरह मंसूर में है ये रवायत। माँ बाप की नज़रों के सामने खुश खुर्रम रहना, उनको खुश खुर्रम रखना, उनके सामने मुस्कुराना, हंसना, उनसे ऐसी बातें, ज़बान की आफतों से मुतालिक एक चीज़ पढ़ी जाएगी ताकि हमारी नेकियां जो हम कमाते हैं जिक्र दरूद पढ़कर कुरान पढ़ के ये सब महफूज रहें और ज़ाया ना हो। कभी एक किस्सा पढ़ा जाएगा ताकि ये बात याद रहे। जुनून मिस्री रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं एक मर्तबा में सरसब्ज़ और शादाब बाग के पास से गुजर रहा था, एक नौजवान को देखा एक दरख्त की ओट में नमाज पढ़ रहा था। मैं ये ना जान सका कि नमाज पढ़ रहा है। मैंने उसको सलाम किया, उसने कोई जवाब न दिया। मैंने फिर शेर लिखे, यानी अरबी के शेर, जिनका तर्जुमा है कि जबान को फजूल बातों से मना किया गया। अब वो आदमी नेक आदमी पढ़ रहा था, ये शेख वक्त पहुंच गए, बुजुर्ग आदमी है, उनसे बात करना चाह रहे हैं, बात नहीं कर रहा, जमीन पर लिख कर बता रहा है ये जबान को फजूल बातों से मना किया गया है, क्योंकि ये हलाकत का सबब है, आफात को खींच लाने वाली है। फुर्सत की घड़ियों में हमेशा अपने रब का जिक्र करता रहे और उसे न भूलना, और हर तरह के हालात में उसकी तारीफ बयान किया करो। ये बता रहे भाई, ये काम करो, बातें मत करो। तो ये भी बुजुर्ग थे, ये शेख थे, जब उन्होंने पढ़े तो बहुत रोए। फिर उन्होंने अपनी उंगली से इन्होंने भी जवाब में कुछ अशआर लिखे, और उनका तर्जुमा है कि हर लिखने वाला पेवंद खाक होकर सड़ जाएगा, और उसके हाथ का लिखा हुआ एक जमाने तक बाकी रहेगा। लोग चले गए, हजारों हजार साल चले चले गए, कोई नहीं जानता कि फिरौन की शक्ल कैसी थी, वो दांत कितने थे, उसके वजन कितना था, उसकी लंबाई कितनी थी, कोई नहीं जानता। लेकिन बड़े बड़े बोल जो खुदाई का दावा पता नहीं क्या क्या कह के चला गया, सब महफूज हो गया, उस पर सुबह शाम लानत हो रही। कहीं आदमी गल गया, कहीं चला गया, लेकिन उसको जो है जबान से जो कह दिया, लिख दिया, वो महफूज हो गया, उस पर उसका हिसाब हो। हर लिखने वाला पैवंद खाक होकर सड़ जाएगा, उसके हाथ का लिखा हुआ एक जमाने तक बाकी रहेगा। बस तू अपने हाथ से ऐसी ही चीज लिख जिसे देखकर कयामत को तुझे खुशी नसीब हो। शेख ने ये बात लिखी तो नौजवान ने ये पढ़कर उसकी चीख निकल गई और वो इंतकाल कर गया, मर गया। ऐसे होता है, अल्लाह वाले को दिल पे असर बात कर गई, गुजर गई। शेख ने उसकी तजहीज तकफीन का इरादा किया तो गैब से आवाज़ आई कि उसके आखरत के सफर के इंतजाम फरिश्तों के सुपर्द कर दिए गए हैं, आप जहमत ना करें। वो दरख्त की तरफ गए, कुछ नमाज पढ़ी, पलट कर देखे तो उसका कोई अता पता नहीं था। आदमी भी गया, फरिश्ते भी ले गए, मामला ख़त्म हुआ। पहुंच भाई, जबान की हिफाजत के बारे में ये चीज़ पढ़ी गई। जबान ऐसी चीज़ है कि 100 साल का काफिर उससे कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो सारी बुराइयां माफ, अब जो है वो नए पैदा बच्चे की तरह हो गया। और 100 साल का मुसलमान कोई कलमा कुफर कह दे तो सारी उम्र की नेकियां बर्बाद और जहन्नम में जाने को हो गया। तो जबान ऐसी चीज़। कुरान शरीफ में कितनी जगह नाफरमानों के कौल बताए गए, किस तरह अल्लाह ताला ऐसी बातें कहने पर नाराज़ हुए, और अम्बिया अलैहिस्सलाम की दावत के बोल, लुकमान की नसीहत के बोल अल्लाह को पसंद आए, उनको कुरान में बयान फरमाया। जबान की एक चोट से और हरकत से खानदान के खानदान उजड़ जाते हैं, खानदान के खानदान उजड़ जाते हैं और मुल्कों में जंग छिड़ जाती है। जबान की एक अच्छी बोल से सुलह से खानदान मिल जाते हैं और इंसानियत तबाही से बच जाती है। अगर दिन के आखिर में नामा अमाल हमें प्रिंट करके दे दिया जाता, ये दो तुमने ये कहा था आज, और उसमें नंबर भी लिखे हुए होते क्या ग्रेड मिला है, आदमी इतना परेशान होता, काश मैं ये बात नहीं बोलता, नहीं बोलता, बेकार ही बोला, जाया कि रोजाना मिल जाया करता। एक बुजुर्ग रोजाना जो बात कहते लिख लेते थे, रात के आखिर में हिसाब करते थे, यहाँ ये क्यों कहा था, ये क्यों कहा था। आदमी बेतकल्लुफी में कहीं पर मजलिस में दोस्तों के हमेशा जबान पे काबू रखे, जो चुप रहा वो नजात पा गया, चुप रहा नजात पा गया। ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पास लिखवा कर रखा हुआ था, ये हदीस शरीफ में आया है, मन समता नजा, मन समता जो खामोश रहा ना जाता। अल्लाह ताला हमें हर बात के जवाब में या कोई पूछे हर चीज में कहना जरूरी नहीं है, बाज़ दफ़ा आदमी खामोश भी रह सकता, वहां से हट जाए, दूसरी तरफ चला जाए, बहुत फायदा होगा, बाद में खुश होगा, अच्छा मैंने अच्छा कहेगा, कोई इसलाह नहीं होगी और बेकार वो अपना दिल खराब होगा। एक मजमून छोटा सा पढ़ा जाएगा, हज़रत शेख मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातहू के इस्लाही खुतबात में से, में दुनिया की हकीकत हजरत ने बताई, दुनिया में हम रहते हैं, खाते पीते हैं, दुनिया की हकीकत, ताकि जो लोग पहले जा चुके हैं, जो हमारे बुजुर्गान हैं, वो क्या हकीकत बताते हैं, क्या कुछ खुलासा, कुछ चीज़ें पढ़ी जाएंगी, इसको गौर से सुनिए, उसके बाद इंशाल्लाह आखिर दुआ वगैरह होगी। हम लोग सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक दुनिया की दौड़ धूप में लगे हुए हैं, किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया कमा लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिल जाए, कुरान शरीफ में फरमाया कि दुनियावी ज़िंदगी खेल कूद है, जीनत और सजावट का सामान है। आपस में एक दूसरे पर फख्र करना, माल व दौलत और औलाद में एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश करना, सारी दुनियावी ज़िंदगी का हासिल बस यही। हज़रत ने उसकी तफसील में लिखा है कि आदमी मुख्तलिफ ज़मानों से गुजरता है, एक ज़माने में एक चीज़ से दिल लगाया और उसके मिलने से खुश होता है और उसके जाने से उसको तकलीफ़ होती है। जब वो उस दौर से निकल के दूसरे दौर में आता है तो वो पिछले दौर पे हंसता है कि अफसोस मैंने किस चीज़ में दिल लगाया। हज़रत उसकी कुछ मिसालें बयान करवाते। छोटा बच्चा है, छोटा सा बच्चा अभी गोद में है, तो उसकी सारे शौक और सारे अरमान खेल कूद के होते हैं, और ऐसे खेल जिनका कोई मकसद नहीं होता है, न हार न जीत। किसी ने एक झुनझुना ला के उसको पकड़ा दिया खिलौना, उसको बजा रहा है दिन भर, ये मेरा खिलौना है। अगर कोई ले ले तो बहुत नाराज होता है, बहुत रोता है। उसकी कुल कायनात, सारी दुनिया की जिंदगी की प्रॉपर्टी ये झुनझुना है कि भाई ये नहीं लेना। उसको लाके कोई कीमती कोई घड़ी दे, वो बहुत चीजें दे, उसको जेवर दे, उसको चीजें नहीं लेगा। और नहीं, मुझको वो चाहिए, उसमें से आवाज अच्छी आती। छोटे बच्चे को किसी ने सोने की कोई चीज दे दी, गोल्ड, तो लेकर जा रहा था। किसी आदमी ने उसको दिखाया कि देखो मेरे पास चॉकलेट है, ये बहुत खूबसूरत है, मज़ेदार भी है, तुम्हारे पास बेकार चीज़ है, पत्थर है, इसका कोई काम तो है नहीं, इसके बदले ये खरीद लो। बच्चा खुश हो गया, हाँ लाओ भाई चॉकलेट, ले गया, घर में आया, मैंने इतना अच्छा सौदा किया, सोना बेच दिया, चॉकलेट ले लिया। तो बच्चा अगर उससे झुनझुना ले लिया जाए तो रोना शुरू कर देता है कि मेरी तो कुल कायनात ही यही थी, लुट गया मैं। अब उसके बाद बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ी समझ आने लगी, तो अब वो झुनझुना जो है उसके लिए बेहकीकत हो गया। अब उसको दूसरे किस्म के खेल चाहिए, दूसरे खिलौने चाहिए। अब कोई जो है ईद में फिर वही झुनझुना ले आए कोई रिश्तेदार, तो बच्चा नाराज होता है, मुझे क्या दूध पीता बच्चा समझा है, मेरे लिए झुनझुना लाए, अरे मैं बड़ा हो गया हूँ, ये नहीं चाहिए। तो अब बच्चे को उस पर गुस्सा आएगा और अपनी पिछली जिंदगी पे हंसता है कि मैं कैसा था, ये झुनझुने से दिल लगाए हुए। तो अब वो जो है खेल कूद में लगा हुआ है, गुल्ली डंडा है, आंख मचोली है। अब कोई उसको मना करे तो नाराज होता, नहीं ये खेल है मेरे लिए बहुत अच्छा। अब जब जवानी का दौर आया तो जो खेल बचपन में पसंद थे, गुल्ली डंडा, आंख मचोली, सब बेहकीकत हो गए। अब कोई जवान आदमी कहे चलो आंख मचोली खेलें, तो कहे मैं कोई बच्चा हूँ, मैं बेवकूफ़ समझाएगा। तो उसको अब ये पिछला दौर बेहकीकत नजर आ रहा है कि मैं बेकार में जाया किया। अब उसको खेल कूद के बजाय उसको फैशन से और जेब व जीनत से दिलचस्पी हो गई। कपड़े आला दर्जे के हों, ये जो मतलब यूथ अब शुरू हुआ, कपड़े आला दर्जे के हों, मेरा लिबास, बाल, जूते सब अच्छे हों ताकि लोग मेरी तरफ देखें तो खुश हों, स्त्री खराब ना हो कपड़ों पर। पहले ये हाल थी छोटे बच्चे के कि कपड़े मैले हो रहे हैं तो हुआ करें, टोपी टेढ़ी हो रही है तो हुआ करें, मुझे तो खेलने से मतलब है। बड़ा बड़ा हुआ अब हर चीज़ में देख रहा है, कहीं भाई खेल तो छोड़ो, हार या जीत, मेरे कपड़े खराब नहीं हो, स्त्री खराब नहीं हो, मेरा जो है फैशन में जूते पे गर्द नहीं पड़नी चाहिए, इस फिक्र में लगा, बार बार बाल झाड़ रहा है, बार बार अपने बाल तर बना रहा है। ये जवानी का दौर है। उसके बाद और बड़ा हो गया तो अब वो अधेड़ उम्र में हो गया, 35-40 साल का हो गया, तो अब उसको कपड़ों वगैरह का ख्याल खत्म हो गया कि भाई कपड़ों पर शिकने आए ना आए, उनकी स्त्री खराब हो कोई बात नहीं, लेकिन कैरियर अच्छा होना चाहिए भाई, वो पढ़ाई लिखाई है, तालीम है, जॉब है, डिग्री है, फलां से आगे निकल जाऊं, ये ओहदा मिल जाए, ये जॉब मिल जाए, इन चीज़ों के में लगकर अब उसको फैशन का ख्याल दिल से निकल गया। अब उसके बच्चे भी हो गए, कोई सर पर चढ़ रहा है, कोई बच्चा रो रहा है, कोई गोद में बैठा है, कपड़े ख़राब हो रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। अब उसको कोई कहे कि भाई स्त्री ख़राब हो रही है, भाई हुआ करे, अब अपनी पिछली ज़िंदगी में हंसता है भाई तुम क्यों जो है मैं किस चीज़ में दिल लगाया। अब उसके बाद जब बुढ़ापे का दौर आया तो उसको फिक्र इस बात की होती है कि माल जमा हो जाए और माल औलाद ज़्यादा हो जाए, और आपस में बैठे हैं तो बातचीत हो रही है, मेरा फलां बच्चा अमेरिका में है, फलां बच्चा इंग्लैंड में पढ़कर आया है, उसकी ये डिग्री है, उसको इतनी तनख्वाह मिलती है, ये एक बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़कर आया है, ये उस ओहदे पर है, पूरा कारखाना है उसका, दिन भर बड़े बूढ़े अब इन चीज़ों में बात करते हैं कि ये उनकी फ़ख्र की चीज़, दूसरी चीज़ों में दिलचस्पी नहीं। हज़रत ने फरमाया कि जब आदमी एक मरहले से दूसरे मरहले में दाखिल होता है तो पिछले मरहले को बेहकीकत समझ, अरे वो सब बेकार था, असल तो ये है जिसमें मैं अभी हूँ। फिर आखिर में जो है क्या होता है कि जब आंखें बंद होने लगती हैं और कब्र में पहुँचने के बाद अगला मरहला शुरू होता है तो दुनिया की सारी चीज़ें जिन पर दुनिया में आपस में लड़ते और मरते थे इसी तरह बेहकीकत नज़र आएंगी जैसे छोटे बच्चे का झुंझुना। छोटे बच्चे का झुंझुना। आखिरत में पहुंचने के बाद दुनिया की सारी चीजें बेहकीकत नजर आएंगी, लेकिन चूंकि आंखों पर पर्दे पड़े हुए हैं, जिस मरहले से गुजर रहा होता है उस मरहले को सब कुछ समझ में लगता है, सब कुछ समझ लेता है। ये जिंदगी की हकीकत है। जैसे छोटा बच्चा खेल कूद में दिल लगाता है, खिलौने हैं उसमें लगा हुआ है, तो अम्मा अब्बा हंसते हैं, अरे बेवकूफ़ है, इसको कुछ पता ही नहीं दुनिया की हकीकत का, कि दुनिया में क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, कहाँ से कमाते हैं, कैसे खर्च करते हैं, कुछ मालूम नहीं। बिल्कुल इसी तरह जब लोग गाड़ियों से, महलात से, घरों में और फैशन से और चीज़ों से खेलते हैं कि ये मैंने जमा कर लिया, बड़ा अच्छा है, बड़ा खूबसूरत है, तो बुजुर्गान उनके ऊपर हंसते हैं कि भाई ये बच्चे हैं, ये कुछ हकीकत नहीं जानते, बच्चे हैं कुछ हकीकत नहीं जानते, थोड़े दिन में सब मालूम हो जाए, थोड़े दिन में सब मालूम हो जाए। भाई दुनिया की हकीकत आदमी पहचान ले, उसका एक किस्सा वाकया पहले कभी अर्ज किया था, वो दोबारा दोहरा देते हैं कि एक काश्तकार था, उसको खेत फसल उगाया करता था, और उसको अपने खेत में खुदाई के दौरान एक संदूक मिला, उसमें कुछ पत्थर थे रंग बिरंग के, नीले पीले, उसने कहा पत्थर होंगे ये, रख लिया उसने, काश्तकार है वो, कुछ पत्थर बंदरों को मारने में जाया किए, कुछ परिंदों को भगाने में जाया किए, कुछ बकरियों गाय वगैरह को मारने में, यानी जो जानवर करीब आता है पत्थर मार मार के उसको भगाया था। होते होते वो उसका संदूक खाली होने लगा। एक दिन किसी पड़ोसी की नज़र पड़ी, उसने कहा कुछ कीमती पत्थर मालूम होते हैं, अभी शहर जाओ, अकलमंद लोगों से पूछो ज़रा कि इसकी कीमत वगैरह हो तो तुमको फ़ायदा होगा। तो बेचारा आकर शहर गया, एक दुकान में जाए, दूसरी दुकान में जाए, सब दुकान वाले परेशान, कहते हैं ये इतने कीमती पत्थर हैं, हीरे, जमुरद, जवाहरात, रूबी, डायमंड, कि हम उनकी कीमत नहीं दे सकते, बड़ी दुकान में जाओ, होल सेल की दुकान में। बेचारा पहुंचा वहां, जो है जाकर के उजारो कतार हो रहा है कि भाई सारे मैंने 90% तो बंदरों को मारने में जाया कर दिए, थोड़े से लाया हूँ, जो भी चलो मिल जाए ले लो। तो ये ज़िंदगी की हकीकत है कि आदमी का एक एक लम्हा जो है वो कीमती था, और उसको आखरत के लिए नेकियां कमा के सोना चांदी लेकर जाना था, लेकिन वो कभी झुंझुनों में से लेकर मकानात में और चीज़ों में लग गया बेचारा। इसमें एक चीज़ याद रखने की है कि देखिए रास्ता अंधेरा है, ये एक अगला वाक़या है। लोग ग्रुप और काफिले जा रहे हैं जंगल में से, आदमी की ज़िंदगी का सफ़र है, अंधेरे जंगल में जा रहे हैं, कांटे भी हैं, दरिंदे भी हैं, गढ़े भी हैं, गिरेगा भी इधर भी, कुछ पता नहीं आगे क्या है, हज़ारों हज़ार लोग पहले जा चुके, अब आप जा रहे हैं। अब जो अकलमंद है वो अपने से आगे वालों से रابطہ कायम करेगा, किसी ज़रा फ़ोन करेगा, कॉल करेगा, भाई आप लोग जब वहाँ से गुजरे तो 5 मिनट के बाद क्या आने वाला है, मुझे ज़रा बताइए, मैं तैयारी कर लूँ, मुझे बताइए, तैयारी कर लूँ। जो अकलमंद होगा वो पूछ पूछ के चलेगा, भाई आप जब 40 साल के थे तो आपने क्या तरीका अख्तियार किया था, दीन, दुनिया, माज, चीज़ों में क्या किया था, मुझे भी बताइए, मैं कहीं गिर ना जाऊँ किसी। जो आदमी पूछ पूछ के चलेगा, हजरत जब आप 50 साल के थे आपने क्या तरीका अख्तियार किया था दीन दुनिया का, मुझे बताइए, मुझे सिखाइए, मैं मुझे नहीं समझ में आता, तो वो उसको वो कामयाब हो जाएगा, लोग उसको बताएंगे, मियाँ जब इतने साल के होते हैं तो ये मुश्किल होती है, और ये इतने साल पर ये मुश्किल आई, ये आई, तुम ऐसा ना करना, हमारी ज़िंदगी में तो गड़बड़ हो गई, तुम बच जाना। जो आदमी पूछ पूछ के चलेगा, मशवरे से चलेगा, बुजुर्गों की निगरानी में चलेगा, वो बच जाएगा। जो आदमी बगैर पूछे भाई मैं अकलमंद हूँ, बेवकूफ़ अपने को अकलमंद समझता है, तो कहता है जैसा आएगा मैं निपट लूँगा, आप कभी इस गड्ढे में गिर गया, कभी उस गड्ढे में गिर गया, कभी किसी अंधेरे में गिर गया, पूरी ज़िंदगी यानी परेशान हुआ, आखिरी ज़िंदगी में अगर वो उससे कहा जाए किताब लिखो तो 10-15 बातें लिखेगा कि भाई यही है नहीं करना, अगर दूसरों से पूछ लेता तो हज़ारों बातें सीख लेता, हज़ारों बातें सीख लेता कि भाई ऐसा ज़िंदगी गुजारनी। मशवरा करे, इस्तखारा करे, दुआ करे, आदमी खूब कोशिश करे, आखिर में राज़ी हो, शुक्र करे, सब्र करे, और इन कामों के लिए शेख की ज़रूरत होती है। हर आदमी को, मुसलमान भाईमान, उसको एक शेख की ज़रूरत है। तो बैत होना, बाकायदा कोई पीर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक आदमी हो जिससे इस्लाही ताल्लुक़ हो और उनके मशवरों पर अमल करें। ये नहीं कि सिर्फ कौन सा वजीफ़ा पढ़ूँ, बल्कि ये कि ज़िंदगी के वाक़यात में आदमी कैसा ज़हन हो, क्या चीज़ करे, ये मशायख से आखरत की बातें पूछनी चाहिए। शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने 400 उस्तादों की खिदमत में रहकर 4000 हदीसें पढ़ी और एक हदीस को अमल के वास्ते मुंतखब कर लिया। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी है, उसमें अपने वो एक शागिर्द को जो आलिम बन गए थे उनको नसीहत फरमाई, शागिर्द ने पूछा था कुछ बातें, उन्होंने नसीहत फरमाई, उसमें एक रवायत नकल की कि शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह 400 उस्तादों की खिदमत में रहकर 4000 हदीसें पढ़े और एक हदीस को अमल के वास्ते मुंतखब कर लिया उन्होंने। क्योंकि वो उनकी नजात के लिए काफी हो गई और अव्वलीन आखरीन के उलूम उसमें आ गए। हदीस का एजाज है कि उसमें इतने उलूम आ गए। का तर्जुमा है, दुनिया के लिए इतना काम कर जितना तू उसमें रहेगा। दुनिया के लिए इतना काम कीजिए जितना आप उसमें रहेंगे, और आखरत के लिए इतना काम कीजिए जितना आपका वहां रहना मुकद्दर है। जितना दिन वहां रहना है वहां की तैयारी कीजिए, और अल्लाह ताला के वास्ते इतना काम कीजिए जितना आप उसके मोहताज हैं। अल्लाह तो हर वक्त मोहताज है। और दोजख के लिए इतना काम कीजिए जितना आप उसकी तकालीफ पर सब्र करें। भाई, बुजुर्गों के वाकयात और उनकी बातें, अब कोई चीज़ हमारे दिल को पलट दे, उसमें फ़ायदा हो जाएगा। हज़रत शेख डॉक्टर अब्दुल हई साहब बरकातहू, उन्होंने किताब लिखी है सुकून कल्ब। उन्होंने लिखा कि गौर से सुनो तुमको क्या करना है। 2 रिकत नमाज खुशू व खुजू से अदा करो। आदमी सलातु तौबा, सलातु शुक्र की नियत कर ले। अपने दिल को मतवज्जा करो और गिड़गिड़ा कर अपने मौला से कहो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कहो, या अल्लाह, मैं आजिज़ हो गया, मैं मغلوب हो गया, मैं आपके दरबार में हाजिर हुआ, आप तौबा कबूल करने वाले हैं। या अल्लाह, या रहमान, या हय्यू या कय्यूम, बिरहमतिका अस्तगीस। ये इसमें आज़म है, इसको खूब पढ़ो और कहो, या अल्लाह, जो कुछ मेरे ऊपर है मेरी शामत आमाल है। या अल्लाह, इतना बोझ मुझ पर न डालिए कि उठाने से ना उठ सके। और या अल्लाह, ये दुआ आप ही ने अता फरमाई है बंदों को हलाकत से बचाने के लिए। या अल्लाह, आज दुनिया जहन्नम कदा बनी हुई है तमाम तर नफसानी और शैतानी आमाल से, और मुझ में इतनी ईमानी ताकत भी नहीं। या अल्लाह, मुझे तो दुआ करना भी नहीं आती, ये आप ही सिखा रहे हैं। या अल्लाह, मुझे तौबा करना भी नहीं आता। या अल्लाह, मैं दिल से भी नहीं कह रहा, सिर्फ जबान से कह रहा हूँ। या अल्लाह, ये गुनाह भी मुझसे नहीं छूटेंगे, कुछ तो मैं छोड़ दूंगा, बाज मुझसे फिर भी नहीं छूटेंगे, फिर मैं डरता हूँ उनके अजाब से, और गुनाह तो फिर गुनाह ही है, मैं कुदरत नहीं रखता उनको छोड़ने की। या अल्लाह, आप ही छुड़ा दीजिए, अपनी रहमत से, अपने फजलो करम से बचा लीजिए, आप ही नदामत की तौफीक दे दीजिए, आप ही नदामत कबूल फरमा लीजिए, और गुनाहों से मेरे दिल में नफरत बैठा दीजिए, और पकड़ ना फरमाइए, और अजाब से बचा लीजिए। या अल्लाह, हमारी हालत बहुत ख़राब है, हम आपकी रहमतों से महरूम हो गए, शैतान ने हमारे नफ्स पर कब्जा कर रखा है, हम जलील व ख़ार हो गए, हमारी बदअमालियाँ माफ़ कर दीजिए, हमारे हमें तमाम अहल वयाल को, सारे आलम के सारे मुसलमानों को माफ़ फरमा दीजिए, शामत आमाल से नजात अता फरमाइए, हमको दुनिया आखरत में हयात तय्यबा नसीब फरमाइए, हमारी आकबत बखैर फरमाइए। भाई, जो आदमी ईमान और अमल सालेह के बगैर गया, बड़ा धोखा खाया। अरे, ये तो सब बेकार था। सबसे बड़ा धोखा फिरौन को लगा। ज्यादा चीजें जिसके पास होंगी, जितने ऊपर से गिरोगे उतना चोट लगेगी। सबसे बड़ा धोखा फिरौन को लगा। जान और माल का गलत इस्तेमाल, जबान के गलत बोल, आंख का बहकना, दिल की गफलत, गुनाह, नाफरमानी, दुनिया का सारा फसाद खुद गर्ज अकल की पैदावार है। आदमी के पास क्या है? रूह है, जिस्म है, माल है, रिश्तेदार है, और आमाल है। इन चीज़ों का मजमूआ है आदमी। अब जो बुरा आदमी है, ठीक से अमल नहीं कर पाया, इम्तहान में फेल हो गया, यहाँ पे क्या हुआ? रूह मलकुल मौत ले गए, जिस्म कब्र में कीड़े ले गए, माल वरसा ले गए, रिश्तेदार सब भूल गए, और आमाल क़यामत में मजलूम दावेदार आएंगे और उसके नेक अमल ले गए और अपने बुरे अमल उसको दे गए। पूरा खसारा यहाँ का हुआ। और जो नेक आदमी है, उसके साथ क्या अमल होगा? सालिहीन, औलिया अल्लाह, उनसे मोहब्बत रखने वाले, उनकी तरह बनने की कोशिश करने वाले, रूह आला इल्लीयीन दरजात में आसमानों में पहुंचाई गई, जिस्म जिसको अल्लाह महफूज रखना चाहे खबर, माल उसके लिए सदका जारिया हो गया, ऐसे काम कर गया माल से सदका जारिया, उम्मत को फ़ायदा हो रहा है, रिश्तेदार इतने मोहब्बत करने वाले उसके लिए इसाले सवाब कर कर के भेज रहे हैं, उसके लिए हज करवा रहे हैं, दूसरों के आमाल का सवाब भेज रहे हैं, और आमाल वो इतने ले गया कि पहाड़ों के बराबर ले गया, जिबालुल हसनात, पहाड़ों के बराबर नेकियां ले गया वहां का अमल। चीज़ वही है, आदमी अपनी नियत बदल ले और कोशिश करे, अल्लाह पाक बहुत देने वाले हैं, बहुत देने वाले हैं। सारी दुनिया के अरबों इंसानों की खुशियाँ, लज्जतें, राहतें, ऐश आराम एक जगह जमा कर लें, ये सब मिलके एक जन्नती मोमिन और मोमिना की खुशी और ऐश आराम के बराबर नहीं। जन्नत की लंबाई चौड़ाई आसमान और ज़मीन से ज़्यादा, उसके फल दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठे, मक्खन से ज्यादा नरम, जन्नत के खाने इतने जायकेदार कि हर लुकमे पर मजा बढ़ता जाता। जितना चाहे खाएं, बाथरूम जाने की भी जरूरत नहीं होती। दिल बहलाने की हर चीज, आंखों की ठंडक का सामान, महलात, नहरें, झीलें, पार्क, मैदान, आदमी उड़ता फिर रहा है, हजारों साल जन्नत में तफरी कर रहा है। ना वहाँ कोई कहेगा नमाज पढ़िए, हज को जाइए, रोजा रखिए। भाई वो तो एक टेस्ट था आपके लिए, यहाँ पर आप ऐसी हजारों हजार साल आप तफरी कीजिए। जन्नत की मट्टी खुशबूदार, पाकीज़ा, सुबह का सुहाना वक्त है, हल्की हल्की रोशनी है, ना वहाँ सर्दी है ना गर्मी है, ना हीटर की ज़रूरत है ना पंखे की ज़रूरत है। जब चाहे दरख्त में झूल रहा है, और जब चाहे नहरों में तफरी कर रहा है, जब चाहे हवा में उड़ रहा है, जो चाहेंगे वो मिलेगा। भाई जो आदमी दुनिया से दिल लगाएगा, एक दिन दुनिया से जुदा हो जाएगा। जो आदमी अल्लाह से दिल लगाएगा, जन्नत के शौक में रहेगा, एक दिन वहां पे पहुंच जाएगा। अल्लाह ताला हमें, आपको, सारी उम्मत को जन्नतुल फिरदौस से दीदार अता फरमाए। दुआ फरमाए, दरूद शरीफ पढ़ लें इंशाल्लाह। आइंदा हफ्ते ये हलका 6:30 बजे सियाटल के वक्त के मुताबिक 6:30 बजे मगरिब के बाद शुरू होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, या रहमान, या करीम, या जल जलाल वल इकराम, या हय्यु या कय्यूम, या अव्वल अल अव्वलीन, या आखिर अल आखिरीन, या जल कुव्वति अल मतीन, या राहिम अल मसाकीन, या अरहम अर राहिमीन। या अल्लाह हम कमज़ोर हैं, नाशुक्रे हैं, या अल्लाह हम जाहिल हैं और गाफिल हैं, या अल्लाह हम गुनाहों में डूब गए, या अल्लाह आपके जितने हुक्म थे हमने तोड़ दिए, जितनी नेमतें थीं गलत इस्तेमाल किया, या अल्लाह जो वक्त मिला हमने ज़ाया कर दिया, या अल्लाह हम हसरत अफसोस के साथ आपके दरबार में हाजिर हुए, या अल्लाह आपके सवा कोई खराबी को दुरुस्त करने वाला नहीं, या अल्लाह हमें गफलत से, मुश्किल से, शर्मिंदगी से निकाल लीजिए, या अल्लाह हमारे अगले पिछले छोटे बड़े तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह, या रहमान, या करीम, या जल जलाल वल इकराम, या अल्लाह आपका शुक्र है तमाम मखलूक़ात की तादाद के बराबर, आपके अर्श के वजन के बराबर, आपके कलिमात की तादाद के बराबर। या अल्लाह आपका शुक्र है हर पलक झपकने के वक्त और हर सांस लेने के वक्त। या अल्लाह आप सब कुछ देखते हैं, सब जानते हैं, हमारी हर बात सुनते हैं। या अल्लाह आपके पास हर चीज़ के ख़जाने हैं, मग़फ़रत के ख़जाने, सेहत आफ़ियत के ख़जाने, इज़्ज़त अमन सलामती के ख़जाने, औलाद के ख़जाने, इल्म के ख़जाने। या अल्लाह हमें हर भलाई अता फरमा दीजिए, हर बुराई से बचा दीजिए। या अल्लाह उम्मत की गुनाहों की बख्शिश फरमा दीजिए। या अल्लाह उम्मत में जो लोग बीमार हैं उनको या अल्लाह शिफाए कामला नसीब फरमाइए। या अल्लाह जो मरहूमीन दुनिया से रुखसत हो गए, या अल्लाह उनकी मग़फ़रत फरमाइए, उनको जन्नतुल फिरदौस में मुकाम अता फरमाइए। या अल्लाह आपकी जितनी रहमतें, बरकतें, रहमतें उतरती हैं या अल्लाह हज के दिनों में उतरती हैं, अशरा दिल हज में उतरती हैं, या अल्लाह काबा शरीफ में, मीना में, अरफात में, मस्जिद नबी शरीफ में, रोज़ा मुबारक के पास, या अल्लाह आपकी जितनी रहमतें उतरती हैं रात के आखिरी पहर में, मस्जिदों में, या अल्लाह हम उन तमाम रहमतों के या अल्लाह मोहताज हैं। या अल्लाह हमें अता फरमा दें अपनी रहमत से, फजल से, एहसान से। या अल्लाह हमारे साथ आसानी का मामला फरमा दीजिए, तमाम दुश्मनों, आफतों, बलाओं, मुसीबतों, हादसात से महफूज फरमाइए। या अल्लाह हयात तैयबा अता फरमाइए। या अल्लाह हर सांस आपकी याद हो, जिक्र शुक्र की तौफीक दे दीजिए। या अल्लाह हमारे गुनाहों को हमसे छुड़वा दीजिए। या अल्लाह शैतान और नफ्स से बचाव दे दीजिए। या अल्लाह हमारे घरों में प्यार, मोहब्बत, अमन, सलामती अता फरमाइए। अल्लाह बच्चे बच्चियों की सबकी हिफाजत फरमाइए, उनको इल्म नाफे अता फरमाइए। या अल्लाह जो रमज़ान में जो ज़ौक़ शौक़ इबादत का होता है, या अल्लाह साल भर हमें ऐसा अता फरमाइए। या अल्लाह जो आपके नेक बंदे बंदियां हज को गए हैं, या अल्लाह उन सब के जाने को, रहने को, हज के सफ़र को आसान फरमा दीजिए। या अल्लाह जो दुआएं, जिक्र उनको हर वक्त अच्छी बातों की तौफीक दे दीजिए। या अल्लाह उनकी दुआओं में हमारा हिस्सा भी हो जाए। या अल्लाह हम सब के दिलों में जो नेक ख्वाहिशात हैं, हाजरीन हाजरात, हमारे भाइयों बहनों के दिलों में जो 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 नेक ख्वाहिशात हैं, या अल्लाह सबको गैब से पूरा फरमा दीजिए। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.